તારીખ 3/6/1996 માઉન્ટ આબુમાં થયેલ તત્વચર્ચા
ઓર રાગ દોનો કા પરિણમન ભિન્ન હૈ જો એકત્વ રાગ કે સાથ હોતા હૈ તો ઉસમેં કિસ પ્રકાર સે ભિન્ન હો સકે और ज्ञान में बल किस रीति से उत्पन्न हो गए प्रश्न वेद ज्ञान विषय है कि राग और ज्ञान भिन्न है फिर भी हमारे परिणमन में भिन्नता का अनुभव नहीं गुरुदेव की कृपा से भिन्नता की समझ आई है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है अनुभव एकत्व का हो रहा है इसको भिन्न कैसे अनुभव करें यह प्रश्न है प्रश्न यह है यह राग से एकत्व है यही अज्ञान है यही मिथ्यात्व है यही परिभ्रमण का कारण है इसलिए उसका भिन्न भिन्न अनुभव करना अति आवश्यक है एक प्रश्न तो प्रकार से भिन्न करे दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान बल कैसे उत्पन्न हो बल माने पुरुषार्थ ज्ञान के साथ पुरुषार्थ की उत्पत्ति कैसे हो दो प्रश्न है अब जो पहला प्रश्न है ज्ञान और राग की भिन्नता का विज्ञान करने का उसमें मुमुक्षु जीव को प्रारंभ इस प्रकार से करना चाहिए अंतर प्रयोग का ये प्रयोग का विषय है सिर्फ समझ करने का नहीं है जब को आप सुन रहे हैं तब तो समझ का प्रक्रिया चल रहा है लेकिन उस समझ को परिणमन में लागू करके प्रयोग करना है एक तो हमारे ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपना होने से राग परज्ञेय है वो तो भिन्न रूप जानने का हमारा प्रयास होना चाहिए कैसे कि ज्ञान में स्वपना अंगीकार करने से राग भी परिणमन राग का भी परिणमन हो रहा है ज्ञान का भी परिणमन हो रहा है हम अहम भाव राग में करते हैं तो राग और ज्ञान का एकत्व हो जाता है अगर हम ज्ञान में अहम भाव करें तो राग से भिन्न ज्ञान में अपना अनुभव हो सकता है तो पहले तो उनके लक्षण से भिन्न जाने लक्षण भी यहाँ अनुभव गोचर लक्षण लेना है कि राग में आकुलता नाम दुख है राग मलिन है और राग चला जाता है फिर भी मैं नहीं चला जाता राग का नाश हो जाता मेरा नाश नहीं होता अनेक प्रकार के राग आकर के चला जाता है आकर के चला जाता है मैं तो इसके साथ नाश नहीं होता, मेरा नाश तो नहीं होता। जो जो रोग आता है जानने में आता है वो तो नाश होता है, मेरा जानने का भाव जो है, मेरा ज्ञान भाव है, उसका नाश तो होता नहीं। उस तरह से उनको भिन्न जाने, भिन्न जानते रहे, अवलोकन भिन्न करते रहे, उस प्रकार से उनके लक्षण के अवलोकन से उसका अच्छी तरह प्रैक्टिस होना चाहिए। इस प्रयोग का भिन्न जानने का लक्षण से लक्षण से भिन्न जानने का अच्छी तरह प्रयोग का प्रैक्टिस चलना चाहिए। उस प्रैक्टिस के दौरान ज्ञान में अपनी जो व्यापकता है उनका अवलोकन करो, तो राग में अपनी व्यापकता मालूम नहीं पड़ेगी। जब तक ऐसा मालूम नहीं पड़े तब तक गौर से अवलोकन करते रहो, गौर से देखते रहो कि मेरी व्यापकता मेरे ज्ञान में ही समाप्त होती है, इससे आगे जाकर के मेरे ज्ञान की व्यापकता राग में नहीं आती। जहां तक ये व्यापकता मालूम नहीं पड़े वहां तक संशोधक वृत्ति से देखने का प्रयास करो, अपनी व्यापकता को देखने का प्रयास करो, विचार करो नहीं, प्रयास करो। फिर आगे जाकर के अगर व्यापकता मालूम पड़ी तो उसकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरह करते रहो। वो प्रैक्टिस के दौरान फिर अपनी वेदकता का अनुभव करो कि ज्ञान में सिर्फ ज्ञान वेदन है, ज्ञान में राग का वेदन नहीं, राग आकुलतामय है, ज्ञान निराकुल सुख स्वरूप है। ज्ञान कषाय स्वरूप होने से आकुलता रूप है, ज्ञान में कषाय का अभाव होने से निकल निराकुलता रूप है। अपने वेदकता का व्यापकता के साथ साथ भिन्नता के साथ साथ अवलोकन करने का प्रयास करो। जब ज्ञान वेदन मालूम पड़ने लगे ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से, उसमें क्या करना होगा कि जो भी ज्ञान विशेष में अनेक गुणे प्रतिभाषित होते हैं वहां ही ज्ञान सामान्य है। ज्ञाकार को गौण करके ज्ञान सामान्य का अवलोकन करो ज्ञान विशेष के द्वारा। तो ज्ञान सामान्य में जो ज्ञान वेदन है वो आविर्भूत होने लगेगा, उसकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरह चलनी चाहिए। जब ये प्रैक्टिस अच्छी तरह चले तो एक स्टेज आ जाएगा ऑटोमेटिक स्वतः कि अरे वेदक भी मैं हूं और वेद्य वेदन में आने योग्य भी मैं ही हूं, मेरा ज्ञान ही वेदन करता है और मेरा ज्ञान ही मुझे वेदन में, वही ज्ञान ही वेदन में आता है, इसलिए मैं प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप हूं। एकांत शुद्ध, क्योंकि वेदन में तो कोई एडल्ट्रेशन हुआ नहीं। सामान्य ज्ञान में तो मेयों की भी कोई पहुंच नहीं है, यानी ज्ञान गे का संबंध नहीं है। ज्ञान गे का संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्ञान विशेष तक मर्यादित है, ज्ञान सामान्य तक नहीं है। पर जैसा ज्ञान सामान्य है वैसा ही मेरा स्वरूप है। वेदन गोचर जो ज्ञान है वैसा ही मेरा स्वरूप है। और अगर मेरा वेदन प्रत्यक्ष है तो मेरा स्वरूप भी प्रत्यक्ष है। स्वरूप के प्रत्यक्ष वेदक अंश के द्वारा स्वरूप की अनंत प्रत्यक्षता को विजुलाइज करो, विचार करो। नहीं जहां तक वो विजुलाइज नहीं है कोशिश करो, प्रयास करो भीतर में। अगर हमारा अनंत प्रत्यक्ष स्वरूप मालूम पड़ेगा, मैंने प्रतिभाषित होगा, तो एकदम पुरुषार्थ उम्र के बाहर आएगा, बल आएगा एकदम कि मैं प्रत्यक्ष ऐसा अनंत सामर्थ्य स्वरूप हूं। अनंत गुणों का एक रूप अनंत सामर्थ्य जो है ऐसा मैं प्रत्यक्ष हूं। ये प्रत्यक्ष होते ही ज्ञान बल पैदा हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से ज्ञान के साथ जो पुरुषार्थ का उत्पाद होता है उसी को ही कहते हैं ज्ञान बल। इस तरह से अपने ज्ञान का अंतर में बार बार प्रयास करना उसी को कहते हैं ज्ञानाभ्यास। और ऐसा कथन करने वाले शास्त्र का जो अभ्यास है वो व्यवहार ज्ञानाभ्यास है। शास्त्र का अभ्यास को लोग ज्ञानाभ्यास कहते हैं, लेकिन कौन से शास्त्र के? इस प्रकार का निरूपण करने वाला जो शास्त्र है उनका अभ्यास करना उसको व्यवहार ज्ञानाभ्यास कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। और भीतर में ऐसा प्रयोग चले बार बार उसको वास्तविक रूप से निश्चय रूप से ज्ञानाभ्यास कहने में आता है। ऐसा ज्ञानाभ्यास करने का विधान भगवान की वाणी में है और यही विधान, यही हमारे लिए तीर्थंकर देव का फरमान है। ये जिनेंद्र की जिनाज्ञा है जिसको हम शिरोधार्य करें तो हमारा भी निवेदन हो जाए। ये हुआ पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, मुमुक्षु को अपना प्रयोजन की पकड़ में जो कमी है यह परिभ्रमण की चिंतना से शुरुआत न हुई हो तो इसलिए ऐसा होता है। प्रयोजन की पकड़ के लिए क्या करना चाहिए, समझाइए क्या प्रश्न है। कि मुमुक्षु को अपना हित साधना वही अपना प्रयोजन है। उस प्रयोजन की विशेष समझदारी के लिए हम ये सामूहिक प्रयास करके ये स्वाध्याय सत्संग रखते हैं, फिर भी पकड़ उतनी नहीं होती है, तो अहित रूप परिणाम में मुमुक्षु बह जाता है। प्रश्न वो है कि ऐसा क्यों होता है? क्या वो परिभ्रमण की वेदना में नहीं आया है इसलिए ऐसा होता है? ऐसा प्रश्न है। तो परिभ्रमण की वेदना में क्या होता है तो थोड़ा अपन समझ ले इस बात को कि जिसको परिभ्रमण के दुख का भाव भाषण हुआ हो उसे ही परिभ्रमण की वेदना आएगी। जहां तक वो परलक्षी विचारधारा में बात रहती है वहां तक वो वेदना उठती नहीं है। और जीव अनादि से अनात्मा की चिंता में घिरा हुआ है, अनात्मा मैंने शरीर और संयोग, उसकी चिंता में घिरा हुआ जीव अनेक प्रकार का धर्म साधन करने के बावजूद भी सफल नहीं होता, क्योंकि उस चिंता में वो फंसा हुआ है, घिरा हुआ है। अब वो उस चिंता के कारण से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, बहुत दुखी हो रहा है और बहुत अनंत दुख भोग रहा है। उस विषय का जब भाव भाषण होवे, उस दुखों का भाव भाषण होवे, तब तो वेदना ये बिना रहेगी नहीं, तो वो चिंता देहार्थ की चिंता छूट जाएगी, अनात्मा की चिंता छूट जाएगी और आत्मा के कल्याण अकल्याण के विषय में चिंता होगी। पर वही प्रयोजन है हमारा कि हमारा अकल्याण नहीं हो और हमारा कल्याण हो, तो यहां से प्रयोजन की पकड़ अच्छी तरह चालू होती है, क्योंकि अंतर की वेदना से वो प्रश्न आया है, ऊपर ऊपर से नहीं आया। ऊपर ऊपर से मैंने बौद्धिक स्तर से इस बात को समझ करके हम हमारे परिणाम पर सावधानी करते हैं तो भी वो कमी रह जाती है और उदय में प्रयोजन को चुक जाते हैं और अहित रूप परिणाम में बह जाते हैं। तो वेदना से भी ये पकड़ आती है, ये शुरुआत होती है इस पकड़ की। फिर जब निर्धार होता है कि किसी भी कीमत पे मुझे इसी भाव में आत्मकल्याण कर लेना है, अब दूसरा भाव में उनको मुदत नहीं डालनी है कि अगले भाव में काम करेगा, करना है इसी भाव में कर लेना है, और यह भाव का आयु हमारा अनिश्चित है। हमें दूसरे काम में इस काम में देरी नहीं लगाना है, दूसरे काम के बहाने। तो जब टॉप प्रायोरिटी में आत्मकल्याण का निर्धार होता है कि एट एनी कॉस्ट हमको ये कर ही लेना है, अनकंडीशनल, हमारी कोई शर्त नहीं है, तब ये प्रयोजन की पकड़ और तीक्ष्ण हो जाती है और सूक्ष्म भी हो जाती है। बस इसी स्टेज से मुमुक्षुता का विकास होता है, ज्ञान दशा के प्रति ये बहुत तेजी से चालू हो जाता है। ये दूसरा स्टेज इसके लिए एक बूस्टिंग स्टेज है, बूस्टिंग मिल जाता है, यहाँ से जोर आता है, यहाँ से संवेग आ जाता है, वहाँ से ऐसा बनता है क्यों? कि पूर्णता का लक्ष्य में बहुत बड़ा काम की जिम्मेवारी उठा ली, निर्वाण पद की जिम्मेवारी उठा ली, मामूली काम की नहीं उठाई, इसलिए संवेग आता है और प्रयोजन की पकड़ अधिक तीक्ष्ण और सूक्ष्म हो जाती है। तो ये पकड़ के लिए क्या करना, आत्मकल्याणकार निर्धार को यानी पूर्णता के लक्ष्य के में आ जाना। स्वतः प्रयोजन की प्रकट सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो ही जाएगी। ये दूसरा प्रश्न का प्रत्युत्तर है। तीसरा प्रश्न, मुमुक्षु को फिलहाल सत्पुरुष, सत्शास्त्र, सतदेव सभी मिलने पर भी उसको किस कारण रह जाता है कि जिससे जीव में संवेग उत्पन्न होता नहीं है? वो तो प्रश्न आते के पहले ही इसका उत्तर आ गया है कि संवेग की उत्पत्ति पूर्णता के लक्ष्य से शुरू होती है। इसके पहले सम मैंने कषाय रस मंद भी हो सकता है, निर्वेद मैंने उदासीनता भी आ सकती है और अनुकंपा भी आ सकती है सभी जीवों के प्रति, और देवगुरु शास्त्र के और सत्पुरुष के प्रति आस्था के विश्वास के परिणाम भी हो सकता है, लेकिन संवेग आए बिना परिणाम तेजी से आगे बढ़ता नहीं। वो संवेग का स्टेज है पूर्णता का लक्ष्य वाला। क्यों? एक साइंटिफिक पोजीशन वहां से खड़ी हो जाती है। भौतिक साइंस में भी ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है, ये बेसिक प्रिंसिपल है कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियलिटी प्रोड्यूसेस द वेलोसिटी। जब दो पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है तो वेलोसिटी मैंने संवेग उत्पन्न हो ही जाता है कि हम नीचे खड़े हैं, बहुत ऊपर जाना है और हमारे पास समय कम है, हमको तेजी से चलना ही पड़ेगा अगर पहुंचना है, और हमको पहुंचना ही है टैनी कॉस्ट पहुंचना है। तो ये डिफरेंस पोटेंशियलिटी हमारे भाषण में उस स्टेज का भाव भाषण आता है कि हम तो बिल्कुल तलवे में खड़ा है, तलेटी में खड़े हैं, हमको पर्वत की चोटी पे पहुंचना है। ये बात ख्याल में आते ही परिणाम को हुक्म नहीं करना पड़ता कि तुम तेजी से काम करो, कर्तृत्व नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक परिणाम में संवेग आ ही जाता है। बहुत साइंटिफिक बात। इस तरह से ये संवेग का प्रत्युत्तर है। और प्रश्न है, स्वरूप लक्ष्यगत होने के बाद नजर से हटता नहीं तो वहां किस प्रकार का कारण होता है कि उसे मोक्ष तक ले जाता है? स्वरूप लक्ष्यगत होने पर स्वरूप जितना महिमावंत है, आज आया ना, अनंत महिमावंत, वही उस महिमावंत का अनंत महिमा को धारण करना वही इसका धर्म है, इसका गुण है, इसका स्वभाव है। तो जितना अनंत महिमावंत है उतना अनंत महिमावंत लगने लगा है, प्रतिगत हुआ, प्रतिभाषित हुआ, इसका मतलब लगने लगा है। जैसा भी लगता है ना कि मैं मनुष्य हूं, वो तो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो करके वो पूरा अभिप्राय छूट करके बदल करके मैं साक्षात सिद्धपद स्वरूप हूँ ऐसा लगने लगता है। उसी का नाम स्वरूप की पहचान है, उसी का नाम स्वरूप का लक्ष्य है। लक्ष्य इसलिए कहा जाता है कि फिर ऐसा अद्भुत से अद्भुत महिमावंत स्वरूप कैसे ज्ञान से छूट सकता है। एक एक्सीडेंट होता है ना, जिस व्हीकल में हम बैठे हैं उसी व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाए और हम बच जाए, और कुछ मर जाए कुछ घायल हो जाए, होता है ना एक्सीडेंट, लेकिन हम बच गए, पूरे के पूरे बाल बाल बच गए। लेकिन एक्सीडेंट की भयंकरता प्रत्यक्ष हो गई जबकि इंद्रिय ज्ञान में, ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष हुआ है स्वरूप। तो अद्भुत से अद्भुत स्वरूप की छाप इंप्रेशन ज्ञान में इतनी उठ जाती है कि स्वरूप नजर आया करता है। जैसे नजरबंदी हो गई, समझो आत्मा वहां से खिसक सकता, हमारी नजरों से हमारा स्वरूप खिसक सकता नहीं है। वही परिस्थिति स्वानुभूति का कारण है, वही परिस्थिति ध्यान का कारण है, और वही परिस्थिति मोक्ष का कारण है, क्योंकि स्वरूप हटता नहीं। पर स्वरूप है भी ऐसा कि एक दफे अगर वो प्रत्यक्ष अंश के द्वारा अपनी अनंत प्रत्यक्षता को प्रत्यक्ष तौर से झांक ले तो फिर वो नजरों से नहीं हटेगा। तो भावभाषणी एक ऐसा है कि उसको मोक्ष तक ले जाता है। मोक्ष तक मैंने परिपूर्ण शुद्धि का उसको जिसने यही मान जाता वहां तक वो ले जाता है, क्योंकि फिर यहां से हट सकते नहीं है। प्रत्यक्षता की बहुत गहरी गहरी इंप्रेशन ज्ञान में आ जाती है स्वरूप की, वो इंप्रेशन छूट नहीं सकती। यही सम्यक दर्शन का अंगभूत कारण है। कैसा कारण है? सम्यक दर्शन का अनन्य और अंगभूत कारण है यही है। और प्रत्यक्ष अंश जो है ज्ञान सामान्य, वो ज्ञान का अंतरंग है। ज्ञान विशेष ने अपनी दिशा को बदल करके वहां से स्वभाव को ग्रहण कर लिया है, तो उसको अंशतः अंतर्मुख होना पड़ा है, तब ये भावभाषण हुआ है, स्वरूप लक्ष्यगत हुआ है। तो अंतर्मुख कैसे होना, वो समस्या वहां से समस्या गई, उसका समाधान उनको अपने परिणमन से मिला। ये चीज परिणमन की है, समझ की नहीं है। बिना परिणमन समझ आए, थिंकिंग पावर से समझ में आए, वो चीज नहीं है। अंतर्मुख का परिणमन जो है वो थिंकिंग का विषय नहीं है, केवल परिणमन से ही वो समझा जाता है। और वो परिणमन स्वरूप की पहचान से शुरू होता है, तब से अंतर्मुख होने की प्रक्रिया चालू होती है, वो प्रक्रिया बढ़ती जाती है और उस अनुभव में परिणमित होती है, फिर वही प्रक्रिया बढ़ करके ऊपर ऊपर के गुरुस्थान में जा करके फिर मोक्ष तक पहुंचाते हैं। और प्रश्न है, अभेद त्रिकाली वस्तु समझाने के लिए भेद से समझाने में आता है तो वहां कैसा प्रकार का पुरुषार्थ करने से अभेद को साध सकते हैं या अभेद की साधना हो सकती है। के द्वारा अभेद का भाव भाषण होना जरूरी था। तुम हीरा को बार बार देख करके उसका परिचय करते हैं, बार बार देखना यही इसका परिचय करने की विधि है। कहीं पहलू से उनको हम देखते हैं, उसके जो आकृति है वो ट्राइंगल रूप है तो इनको तीनों साइड एक सरीखी हो तब इसका घाट बराबर है ऐसा देखने में आता है। पूंछ लंबी हो और टेबल छोटा हो तो उसका घाट अच्छा नहीं माना जाता। तीनों साइड का साइज बराबर हो तब हीरा का घाट बराबर है। फिर उसको पहल को देखते हैं, अगर पहल इनके सब यूनिफॉर्म होते हैं तभी उसकी जो चमक है वो अच्छी तरह उठती है। चमक में भी उनकी डिग्रियां होती हैं। जो नकली हीरे हैं उसमें चमक नहीं होती, असली हीरे में जो चमक होती है उसमें भी किस्म किस्म के पत्थर होते हैं, इसमें चमक ज्यादा हो चमक कम हो तो बार बार देखने से इस चमक की जो डिग्री है उसका प्रैक्टिकल ज्ञान होता है और कौन सा हीरा अधिक चमकदार है वो भी समझ में आता है। और उस चमक को बाधा करने वाली कोई चीज है तो उसमें कोई दाग होता है वो चमक को रोकता है। तो दाग में भी बहुत प्रकार है, काले भी होते हैं, नीले भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, पीले भी होते हैं, डार्क और माइल्ड सभी कलर में डार्क भी होते हैं माइल्ड भी होते हैं। नजर जितनी पैनी होती है सूक्ष्म होती है उतना ही वो पकड़ सकता, वो नजर पैनी होने के लिए बार बार देखने का अभ्यास जरूरी है। इस सब प्रकार का जो पहलू है उसका बार बार देख करके जो अनुभव ज्ञान होता है यही इस विषय का परिज्ञान है। तब हम कहते हैं कि हम हीरा को पहचानते हैं। उसी तरह से आत्मा को भी पहचाने बिना इनके जो अलग अलग पहलू हैं जो उसको भेद कहे जाते हैं, क्योंकि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में आनंद है, आत्मा में अस्तित्व है, ये जो सभी पहलू है वो पहलू से पहचान हो गए। जैसे हीरा के अनेक पहलू से पूरा हीरा का पहचान हो गया वैसे पहचान हो गए, इसके लिए ये पहलू का प्रयोग करना है यानी उसका उसको इस्तेमाल करना है या इसका सदुपयोग करना है। पहचान अभेद की हो जाएगी, जैसे पूरा हीरा समझ में आ गया, ऐसा पूरा आत्मा भाव भाषण में आ गया, पहचान में आ गया। तब से अभेद का लक्ष्य होता है। फिर जो विकल्प में खड़ा है, भेद में खड़ा है, तो उनका एक एक गुण की अनंतता और सामर्थ्यता और महिमा को लेकर के अभेद की महिमा को दृढ़ीभूत करता है। इस तरह से भेद के द्वारा अभेद साधा जाता है। और वो भी अभेद का कॉन्सेंट्रेशन नहीं आवे तब तक। अभेद का कॉन्सेंट्रेशन आने से ये भेद का कोई प्रयोग नहीं है, भेद का विकल्प छूट जाता है। और भेद का विकल्प छूटने से ही निर्विकल्प स्वानुभूति होती है। तो भेद के द्वारा हमको भेद का ज्ञान नहीं करना है, भेद के द्वारा हमको अभेद को लक्ष्यगत करके अभेद में ही अभेद होना है, क्योंकि जो ये हमारा स्वरूप है। इस तरह से अभेद साधा जाता है। आखिर का प्रश्न है कि निरंतर अंदर ठहरने का, मैंने स्थिर होने का है काम, तो निरंतर अंदर में स्थिर होने का है, ठहर जाने का है, जम जाने का है। ठहरना मैंने जम जाना, यही तो हमारा काम है कि हम निरंतर अंदर में जमे रहें, भीतर में अंतर्मुख होकर के। ऐसा क्या जीव का लक्ष्य रहता है, विस्तार से समझाइए। प्रश्न क्या है, स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा कौन सा जीव का लक्ष्य रहता है, ऐसा बात है क्या जीव, मैंने कैसे जीव का, वो कैसा जीव होता है कि जो निरंतर अंदर में रहे, वो प्रश्न है। अंदर में जम जाने के लिए हमें अंदर में आसक्त होना जरूरी है। जैसे बाहर में आसक्ति होती है तो बाहर में रस आता है, और कितना टाइम चला जाता है, समय चला जाता है, ख्याल नहीं रहता है। वैसे अंदर में रस कहां से आएगा, कि अंदर में हम आसक्त होंगे तब। तो अंदर में आसक्ति या बाहर में आसक्ति का होना एक ही कारण से होता है, देख लेना। बाहर में भी सुख का निश्चय हुआ है, वहीं आसक्ति होगी। पर अंदर में जब हमारा निराकुल सुख का हमको अनुभव होगा, हमारी आसक्ति अंदर में हो जाएगी। बस आसक्ति के परिणाम ही जम जाने के लिए जो रस चाहिए, वो रस को पैदा करके परिणाम को जमा देता है। प्रैक्टिकल साइड में आसक्ति होना जरूरी है, और आसक्ति सुख के कारण से होती है। अब हमारी समझ में ये आया कि बाहर में जो आसक्ति होती है उसमें तो सुख नहीं है, दुख है, आकुलता होती है, निराकुलता है ही नहीं उसमें, उपाधि है और मलिनता भी है और चंचलता भी है। तो अंतर में जो स्थिर तत्व है, नित्य तत्व है, कुटस्थ तत्व है, उसमें जो अनंत सुख भरा है, उसकी प्रतीति आती है, विश्वास आता है आंशिक अनुभव के दौरान। तब आसक्ति अंतर के सुख की पैदा होती है, ध्यान में उसका रस जमता है और परिणमन जमने लगता है, ठरने लगता है। ऐसा प्रकार से ये बात अंदर जमने की होती है और वो साधक दशा में होती है, मुमुक्षु को वो स्टेज नहीं आता है, तो जमता नहीं है, जम सकता भी नहीं है। ज्ञान दशा से ही, अनुभव दशा से ही ये अंतर जमने का जो प्रयोग है वो परिणति और ध्यानादि के द्वारा विशेष रूप से होता रहता है और वो आगे बढ़ता जाता है ऊपर के गुण स्थान। ऊपर के गुण स्थान में जाने के लिए स्वानुभूति में वीतरागता की वृद्धि, शुद्धता की वृद्धि, निर्जरा की वृद्धि होना एक ही कारण है। जितनी जितनी वितरागता बढ़ती जाएगी उतना उतना राग का अभाव होता जाएगा, मंद होता जाएगा नहीं, राग मंद होता जाएगा नहीं, राग का अभाव होता जाएगा। गुण स्थान अनुसार राग का अभाव होने से उसका दिखाव बाह्य त्याग में परिवर्तित होता है, तो लोग समझते हैं कि ये त्यागी हो गया, वास्तव में वो स्वरूप का ग्रहण वाला हो गया है, लेकिन उसका दिखाव बाह्य त्याग में आता है। तो जो अंतर्दृष्टि को नहीं समझते हैं, अंतरंग की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, वो बाह्य त्याग की नकल कर लेते हैं और मान लेते हैं कि बाह्य त्याग करने से आत्मशुद्धि हो जाएगी, लेकिन आत्मशुद्धि होने से बाह्य त्याग होता है, उल्टी सुलटी बात है। तो इस तरह से हमको सही विधि समझ करके सही रास्ते पे जाना है। पर्चा का सभी प्रश्न पूरा हुआ है। ये जो स्वानुभूति दर्शन का ग्रंथ है उसमें कुछ प्रश्न है, अगर कल प्रश्न नहीं आएगा तो इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पर शाम की रात्रि की चर्चा चलेगी।